गोपी गिरिवर धारी गोपी जानवर यशोदा नंदन ब्रज जन रंजनाय यशोदानंदन ब्रज जन रंजनाय यशोदानंदन ब्रज जन रंजनाय यशोदानंदन ब्रज जन रंजनाय यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
सभी बोलिए
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
Hare Rama Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagannath, Jagannath, Gauranita, 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 Jaya Gauranita, 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 Gauranita,
Prabhupada ki
Om namo bhagavate vasudevaya
Namo Bhagavate Vasudevaya
Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato jaya mudiraye Nashta praye subhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati ruttama sloke Bhaktir bhavati naishtaki
स्कंद एक अध्याय तीन श्लोक क्रमांक दस नहीं नौ दस शब्दों का परिचय पंचमह कपिलो नाम सिद्धेशः काल विलुप्तम प्रोवाच आसुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम् पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश काल विलुप्तम् प्रवाचासुरये सांख्यम् तत्वग्राम विनिर्णयम् पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विलुप्तम् प्रवाचासुरये सांख्यम् तत्वग्राम विनिर्णयम् पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विलुप्तम् प्रवाच सूरये सांख्यम् तत्वग्राम विनिर्णयम् पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विकृतम् प्रवाच सूरये सांख्यम् तत्वग्राम विनिर्णयम् अनुवाद अर्थात्पर्य शब्द शब्दार्थ पंचमः पांचवा कपिलः कपिल नाम नामक सिद्धेश सिद्धों में श्रेष्ठ काल समय द्वारा विलुप्तम नष्ट प्रोवाच कहा आसुरये आसुरी नामक ब्राह्मण से सांख्यम सांख्य शास्त्र तत्वज्ञान तत्व ग्राम सृष्टिकारी तत्वों का समूह विनिर्णयम भाष्य अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान भी नष्ट हो चुका था। तात्पर्य, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन की यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करें। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत कक्षा में स्वागत है सभी का। जैसे हम कल सुन रहे थे, सुत गोस्वामी अभी किसका वर्णन कर रहे हैं? अवतारों का, भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है मुख्यतः। तो इन अवतारों का वर्णन करते करते अभी कहां पे पहुंचे? कपिल भगवान के अवतार तक पहुंचे। कंटिन्यूस 3 ऋषि हो गए कि नहीं? नारद मुनि भी ऋषि थे, फिर बाद में नर नारायण ऋषि थे, फिर ये कपिल मुनि, तीन इस प्रकार से तीन बार। तीनों का उद्देश्य एक ही था। देखो, इन अवतारों में भगवान ने ना तो किसी का वध किया है, किसी के साथ मारपीट झगड़ा कुछ नहीं, शांति से आए, प्रवचन दिए। नारद मुनि है, वो अपना प्रचार जारी रखे, वो अपना उनका प्रवचन चलता रहता है ना, वो नारद मुनि का चलता है। बाद में नर नारायण ऋषि भी ऐसे आए, योग तपस्या तपस्या के बारे में हमें शिक्षा दिए। अभी कपिल मुनि आए, नारद मुनि का भी शिक्षा क्या है? भक्ति। किन ग्रंथों के द्वारा? कौन सा ग्रंथ नारद मुनि रचना किया था? नारद पंचरात्र। फिर नर नारायण ऋषि आए, उन्होंने क्या शिक्षा दिया? तपस्या। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी कपिल मुनि आए, भगवान कपिल देव का, कपिल मुनि का अवतार लिया, अभी कपिल मुनि का अवतार क्यों लिए देखते हैं। पांच लाइन में परपोट प्रभुपाद जी ने लिखे, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है ना, एक एक सेंटेंस वेदों का एक एक मंत्र जैसा है, उसका व्याख्या करेंगे तो और कितने किताबें बनेंगे। प्रभुपाद जी के खाली तात्पर्य का व्याख्या करेंगे तो। मैं इस बात को कई बार कहता हूं, प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे मंत्र और श्लोकों में अंतर होता है, पता है क्या है? पुराणों में जो होता है उससे श्लोक कहते हैं, ये सब श्लोका है, और वेदों में जो होता है उसे मंत्र कहते हैं। श्लोकों को अगर थोड़ा गड़बड़ी कर दिया जाए पढ़ाई पढ़ने में, त्रुटि हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्क नहीं है, मगर मंत्रों में सावधानी बरतना पड़ेगा, उसमें गलती नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, उसका रिएक्शन तुरंत मिलेगा किसका, मंत्र में अगर गलती होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो सेंटेंसेस है, जो तात्पर्य है भक्ति वेदांत तात्पर्य, वो कैसे मालूम है? वेदों की मंत्र जैसा है, उसको हम बदल नहीं सकते। एक व्यक्ति को अगर सच में तीव्रता से इच्छा है कि उसको वैदिक ज्ञान को समझना है, तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा ही वो समझ सकता है। इस्कॉन में जुड़ने के जो शॉर्ट टाइम है मेरा, कुछ छह साल सात साल में, इन छोटे से समय में भी कुछ ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिन लोग शास्त्रों के बहुत सारे ज्ञान को सीखे हुए हैं, वैदिक ग्रंथों के बारे में जानकारी है, अलग अलग शास्त्रों के बारे में जानकारी है, नॉलेज है उनके पास, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अध्ययन उनके पास नहीं है, इसलिए उन लोग का जो ज्ञान का कोई महत्व नहीं दी जाती अभी समाज में, और इतना सारी चीजों को जानकर भी वो सही मार्ग में वो नहीं है, अभी भटक रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो सच में वैदिक ज्ञान को जानकर, वैदिक दर्शन को जानकर भगवत भक्ति करना चाहता है, उसे चाहिए कि सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही शास्त्रों को समझे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये युग के लिए आचार्य है, युग आचार्य। ये युग आचार्य का कार्य क्या होता है? ये जो वैदिक ज्ञान है, अमोघ ज्ञान जो भगवान जी के मुख से निकला हुआ है, वेद व्यास जी के द्वारा वर्णन किया गया है, गणेश जी के कलम के द्वारा लिखा गया है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रवचन दिया गया है, ये वैदिक ज्ञान, उस वैदिक ज्ञान को जो आचार्य होते हैं अभी के समय स्थान काल पात्रता के अनुसार वो उसको प्रस्तुत करते हैं, उस वैदिक ज्ञान को, ये आचार्य का ये है कार्य है। वो क्या करते हैं? स्थान काल और पात्र, स्थान कौन सा जगह है, कौन सा समय चल रहा है, और कौन व्यक्ति है जो सुन रहा है, इन तीनों के समन्वय को ध्यान में रखते हुए उस वैदिक ज्ञान को जो व्यास देव जी के द्वारा रचना किया गया, उस रचित शास्त्रों को वो प्रस्तुत करते हैं, वो है आचार्य। इसीलिए अगर हमें सही तरीके से वैदिक ज्ञान को समझना है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही उस ज्ञान को समझने के लिए प्रयास करें। ये श्रील प्रभुपाद जी के सेंटेंसेस या ये जो भक्ति वेदांत तात्पर्य, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आम तौर पर अगर इसको समझने के लिए जाए तो ये सब तात्पर्य कैसे मालूम है? एक अंगूठा छाप, मतलब मूर्ख व्यक्ति को भी वो श्लोक समझ में आएगा, और एक विद्वान जो शास्त्रों में एकदम बड़े चढ़े हैं वो भी उस चीज को समझ पाएगा और उस लेवल में उसको समझेगा, और जो भौतिक तरीके से अत्यंत विद्वान है उस व्यक्ति को भी उसके हिसाब से समझ में आएगा। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य का महत्ता है, क्योंकि ये ग्रंथ हम लोग वितरण करते हैं सभी लोग, यह हम एजुकेटेड लोगों को भी देते हैं, विद्वान भी पढ़ते हैं, और साथ साथ में थोड़े पढ़े लिखे लोग, जो कुछ पढ़े नहीं वो लोग प्रवचन सुन के भी उसको समझते हैं। तो ये खासियत है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का। और समझे क्या इसको? देखिए वैदिक ज्ञान 5000 साल पहले से व्यासदेव जी ने लिखा है कि नहीं? भगवत गीता 5000 पहले, 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाया कृष्ण ने, उसके बाद किताब बना ही रहेगा है कि नहीं? और 5000 से लेके प्रभुपाद जब तक कोई आचार्य नहीं आए क्या, कोई विद्वान नहीं आए क्या? क्या इन ग्रंथों के ऊपर टीका नहीं लिखे? लिखे हमारे वैष्णव आचार्य भी अनेकों टीकाओं को लिखे, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनसे पहले जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और इसके अलावा भी अलग अलग संप्रदाय के आचार्य, अलग अलग भक्त, इनके ऊपर कई टीकाएं कमेंटरीज लिखे हैं गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, कितने सारे इन श्लोकों को ही समझे, ये जो तात्पर्य है ऐसे तात्पर्य और भी लोगों ने लिखा है, मगर ऐसा कौन से आचार्य का तात्पर्य है जिसको पढ़ के व्यक्ति सब कुछ छोड़ के कृष्ण भक्ति में लग गया है? किसी का नहीं, किसी ने इस प्रकार से मास प्रीचिंग नहीं कर पाया, सभी लोगों के हृदय को बदल के कृष्ण भक्ति में नहीं लगा पाया। हां उन आचार्यों के ग्रंथों उन भक्तों को पोषण दिया जो कृष्ण भक्त है, रुचि रखे हैं, मगर ऐसे अमेरिका के दारू पीने वाले लोगों को भी कृष्ण भक्त बनाया नहीं, ऐसा कोई ऐसा किसी आचार्य के ग्रंथ नहीं था। तो कोई पूछा क्या उनके पास पावर रहता था? मगर ये खासियत है प्रभुपाद जी का तात्पर्यों का, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य, उनका समझाने का तरीका यह है। इसीलिए हमारे जैसे मंद सुमंद मती को चाहिए कि ज्यादा विद्वत्तापूर्ण चीजों को ना लगा, दिमाग ना लगाकर सरल तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के शरणागत होकर उनकी ग्रंथों का अध्ययन करने से, ये जो इतना आज ये चीज बताऊंगा कपिल मुनि ने क्या बताया एक्चुअली, और उस चीज में निश्चित रूप से बोलता हूं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को छोड़कर और कोई ग्रंथ पढ़ेगा ना उसको समझ नहीं पाएगा। ऐसे चीजों को श्रील प्रभुपाद ने एकदम से सरलीकृत रूप से प्रस्तुत किए, एक आम आदमी मूर्ख मेरे जैसा उसको पढ़ के भी समझ सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया उनको इस प्रकार के। सांख्य दर्शन मतलब माना जाता है केवल ये विद्वानों का ही काम है, उसको पढ़ सकते हैं, बाकी लोगों को पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि समझेगा नहीं, ये है सांख्य। मगर बस प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से तात्पर्य में वर्णन किया कि एक आम आदमी सांख्य समझ जाता है। एक सिंपल बताऊं तो यहां गीता क्लास कुछ तीसरे अध्याय तक चल रहा है ना, दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन है, जो सब लोग सुन रहे हैं उनको पूछेंगे सांख्य योग क्या है, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे आपको सांख्य योग क्या है एक आम आदमी। हालांकि ऐसे ऐसे विद्वानों में कहा हुआ था कि ये सांख्य दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए, नहीं तो कोई नहीं समझ पाएगा, प्रभुपाद जी ने इतना आसान किया कि हम सब समझ जाएंगे, ये केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथों का महत्व है, उनके द्वारा समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के द्वारा है। इसीलिए ये तात्पर्य बहुत आवश्यक है, भक्ति वेदांत तात्पर्य, तात्पर्य का नाम भक्ति वेदांत तात्पर्य क्यों है मालूम है? क्योंकि जो तात्पर्य भक्ति ही वेदों का अंत है करके प्रमाणित करता है वो भक्ति वेदांत तात्पर्य है, वो भक्ति वेदांत स्वामी है जो भक्ति ही वेदों का अंत है करके साबित किया वो भक्ति वेदांत स्वामी है, और वो तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य है जो भक्ति ही वेदों का अंत है करके जिस तात्पर्य में प्रमाण किया गया वो भक्ति वेदांत तात्पर्य। इसलिए भले वो तीन लाइन लिखा जाए या चार लाइन, वो बहुत गंभीर असर डालता है हमारे ऊपर। देखते हैं पंचमा कपिलो नाम, कपिल के नाम से भगवान पांचवा अवतार लिए, जिन्होंने सिद्धेश, ये दो शब्दों से बनता है, सिद्ध प्लस ईसा, ईसा मतलब ईश्वर, ईसा मतलब ईश्वर, यहां पे इस शब्द ईश्वर के लिए यूज नहीं किया गया, यहां पे उसको कैसे संबोधनात्मक अलंकारात्मक दृष्टि से यूज किया गया, जैसे कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठता की दृष्टि से यूज किया गया। सिद्धेश मतलब सिद्धों में श्रेष्ठ है, सिद्धों में जितने भी सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं योग के द्वारा ज्ञान के द्वारा, इन सारे सिद्धों में, जय जगन्नाथ बलदेव, इन सारे सिद्धों में वो श्रेष्ठ है, इसलिए ये शब्द है सिद्धेश। समझ में आया? कौन है सिद्धेश? कपिल मुनि, जितने भी सिद्धि प्राप्त करने वाले हमारे गुरुजी, बहुत सिद्धि प्राप्त किए थे, मगर हमारे कपिल मुनि उनके बाप थे। इस मतलब ईश्वर श्रेष्ठ है कि नहीं। काल विलुप्तम प्रवाचा असुरये सांख्यम। सांख्यम ये सांख्य का जो ज्ञान है, कालानुसार समय के बीतने के द्वारा वो धीरे धीरे से लुप्त हो रहा था। जैसे वहां पे भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, देखो ये ज्ञान जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाल नेह महता। ये कालानुसार योग भ्रष्ट ये टूट चुका था, इसलिए मैं फिर से तुमको बता रहा हूं अर्जुन। कृष्ण कहते हैं ना वहां पे चौथे अध्याय में लगभग, है ना। ठीक वैसे ये सांख्य योग का जो ज्ञान है ये धीरे धीरे से लुप्त होने वाला था, इसीलिए फिर से भगवान स्वयं कपिल मुनि का अवतार लेके ये ज्ञान को फिर बताए। तो ज्ञान तो असलियत में उनकी मां को बताया उन्होंने, है कि मगर वहां से तो स्प्रेड हुआ ना वो, तो इसीलिए यहां पे क्या बताया गया मालूम है क्या, ये ज्ञान किसके लिए उन्होंने बताया, बदमाश ब्राह्मणों के लिए। आसुरी, आसुरी नामक ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण है जो सांख्य दर्शन का वर्णन करते थे मगर उसमें ये भगवत भक्ति को निकाल देते थे। सांख्य दर्शन मतलब केवल ज्ञान, भक्ति नहीं, ऐसा उन लोगों का विचार था। ये आसुरी स्वभाव है। इस प्रकार के आसुरी स्वभाव के ब्राह्मणों के लिए कपिल मुनि ने क्या किया, फिर से सांख्य दर्शन का वर्णन किया। और वो सांख्य दर्शन कैसा, तत्वग्राम विनयम। तत्वग्राम का अर्थ होता है सृष्टिकारी तत्वों का समूह, फिलोसफी दर्शन। कैसा दर्शन, सृष्टिकारी, ये संसार का सृष्टि कैसे हुआ, जगत का ये शरीर कैसे बना, इन सारे चीज प्रकृति और शरीर के साथ संबंध, और भगवान के द्वारा ये प्रकृति कैसे बनता है, प्रकृति के साथ भगवान का संबंध क्या है, किस प्रकार से बीज प्रदान करते हैं, और जीवात्माएं कैसे बनते हैं, किन किन तत्वों से बनते हैं, इन सारे चीजें ये सांख्य दर्शन में बताते हैं कपिल मुनि। कैसे बताते हैं, विनिर्णयम, वो एकदम डिटेल्स, एक एक शब्द को, एक एक तत्व को बहुत अच्छी तरीके से वो वर्णन करते हैं, इसलिए विनिर्णयम शब्द को यूज किया गया। तब ये समझा श्लोक का अनुवाद, कपिल मुनि जब भगवान पांचवे अवतार लिए हैं वो असलियत में सारे सिद्धों में श्रेष्ठ है, इसलिए सिद्धेश। ये काल के अनुसार सांख्य योग यानी ज्ञान योग लुप्त हो रहा था। लुप्त हो रहा था मतलब सांख्य योग भक्ति योग का ही दर्शाता है, ये चीज भूल रहे थे, इसलिए उसको स्थापना करने के लिए और कैसे आसुरये आसुरी प्रवृत्ति के ब्राह्मणों को शिक्षा देने के लिए कपिल मुनि ने प्रकट हुए। उन्होंने क्या शिक्षा दिया, सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया जो कि तत्वों का वर्णन करता है प्रकृति के सृष्टि के बारे में। समझ में आया, ये श्लोक का अर्थ है। अभी कपिल मुनि का सट परिचय। ये कपिल मुनि कर्दम नामक एक ऋषि और उनकी पत्नी का नाम था देवहूति, नहीं उनके बेटे थे। देवहूति बड़े अमीर खानदान की लड़की थी। कितने अमीर थे वो हिसाब नहीं लगा सकते। मनु महाराज की लड़की थी, मनु महाराज की लड़की ना देवहूति, मनु महाराज की। ये मनु महाराज से ही मनुष्य करके हमारा नाम पड़ा। ये शुरुआत में मनुष्य है, मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी के लड़के हैं। मतलब देवहूति ब्रह्मा जी की पोती थी, बेटे का बेटी देवहूति। उनका शादी विवाह हुआ किससे, कर्दम मुनि से। बेचारे कर्दम मुनि बहुत तपस्वी थे, हमेशा तपस्या में योग साधना में लगे रहते थे। मनु महाराज ने आके रिक्वेस्ट किया अपने बेटी को विवाह करो करके, कर्दम मुनि उनको स्वीकार किए भगवान जी का आदेश मानकर। मनु महाराज छोड़ के चले गए, बहुत सारे चीजें दिए भी थे उनको, जो भी है उसका वर्णन है। शादी होने के बाद 10,000 साल तक न 1,000 साल तक, 1,000 साल तक मनु महाराज कर्दम मुनि ने अपने तपस्या में बिजी रहे, पत्नी के प्रति ध्यान नहीं दिए, घर में रहते थे बस। घर में आएंगे तो ये 1,000 साल तक देवहूति किसी भी प्रकार का अर्चन मतलब बाधा न आने पाए भगवान की सेवा में पति की, उसको ध्यान दे देती। अपना सुख की इच्छा ना रखते हुए, अपनी शांति की इच्छा ना रखते हुए, कंटिन्यूसली बिना थके बिना खाए बिना सोए वो अपने पति का सेवा करती, कितना साल? 1,000 साल, ये हद हो गया ना, एक दिन करें ऐसा। अपना सुख के बिना पति इवन ये नहीं पूछते थे कि आप खाए हो क्या, नहीं नहीं पूछते, वो कंटिन्यूस कर्दम मुनि की सेवा करती थी और उनकी जो उनकी भक्ति में कोई बाधा ना आए इस प्रकार के। इवन धीरे 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 से मनु महाराज की लड़की, सोचो उनके सारे ऐश्वर्य धीरे धीरे खत्म होने गया, वो सब खत्म हो गया, खुद जंगल से फल इत्यादि चुन के लाया करती थी अपने पति के लिए, क्योंकि पति भजन में व्यस्त थे, उसके पास समय नहीं था कि पेट की भरण पोषण के लिए चीजों को इकट्ठा करे, वो लेके आया करती थी खुद खाए बिना। और कपड़ा भी फट चुका, मनु की लड़की का कपड़ा फट गया, अभी दूसरा कपड़े लेने के लिए मायके जाने के लिए भी समय नहीं है, पति तो नहीं देता, छोड़ो मायके से लाके गुजारा कर सकते हैं, मगर मायके जाने के लिए भी समय नहीं है, ऐसी सेवा करती थी वो, फटा हुआ कपड़ा और खाना पीना के बिना एकदम से जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, सौंदर्यता खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका था। कर्दम मुनि ध्यान नहीं दिए थे, इस प्रकार के सेवा करते थे, ये मानता है पति की सेवा में। बाद में उसके बाद कर्दम मुनि प्रसन्न हुए, उनसे बोले कि आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, आप जिस प्रकार से मेरी सेवा की है उसके तुलना में मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, फिर भी आप मुझे मांगिए क्या चाहिए। तब जाके बिचारी देवहूति माता ने कपिल मुनि को फिर मांगती है रहने के लिए, घर, स्त्री का सुख और मुख्यतः एक पुत्र चाहिए। कर्दम मुनि इन सारे चीजों को उनको प्रदान करते हैं, कुछ 8 या 9 कन्याएं और साथ साथ में अंत में एक लड़का हुआ था, और लड़के का नाम था कपिल, और ये कपिल मुनि कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान, ये पति की सेवा करने का परिणाम था। उसने कोई तपस्या नहीं किया, उसने कोई योग साधना नहीं किया, बस उसने इतना किया कि पति की सेवा को हेल्प किया, पति की सेवा में, पति की भक्ति मूलक कार्य में उसने हेल्प किया, उनको आरती करना है तो बर्तन धोके दिए, वो भजन में जाना है तो उन्होंने प्रसाद बना के दिया, यज्ञ करना है कि यज्ञ की सामग्रियों को जुटा के दिया, कपड़ा पहनना है तो कपड़े को धोके आयरन करके दिया, उन्हें आयरन बॉक्स नहीं था सॉरी उस समय नहीं था। तो बस केवल केवल पति की सेवा की, फल क्या माना मालूम है? उसकी गर्भ से भगवान स्वयं सुप्रीम लॉर्ड वो जन्म हुए बेटे के रूप में, उसका परिणाम है। कर्दम मुनि कहते हैं मैंने किया हुआ जो भी भक्ति है वो सब मैं आपको अर्पण कर सकता हूं, जिसके द्वारा आपका पुत्र के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए, ये पति की सेवा का महत्व। अगर पति की भगवत भक्ति में संपूर्ण रूप से पत्नी मदद करती है और वो भक्ति नहीं करती है तो भी पति का जो भक्ति का फल पत्नी को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से देवहूति के लड़कियां हुए, कपिल मुनि हुए, लड़कियों का शादी हो गया अलग अलग ऋषि मुनियों से, ब्रह्मा जी ने आके उन लोगों को दिया, कर्दम मुनि बोले अभी मुझे घर छोड़ के जाना है, मेरा काम हो गया, पुत्र संतान प्राप्ति हुआ, लड़कियों का विवाह हो चुका, अभी मेरा कार्य खत्म। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वर्णाश्रम पद्धति को पालन करने के लिए प्रयास करें। इस जमाने में कठिन है वर्णाश्रम, 25 साल तक 30 साल तक उसको ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए। 25-30 साल के बाद उन्होंने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर उनको विवाह करना चाहिए, और जैसे ही पुत्र संतान उत्पन्न होता है और योग्य हो जाता है माता को संभालने के लिए, तभी धीरे धीरे से उसको परिवार त्यागना चाहिए, और कम से कम 55-60 साल के बाद उसको निश्चित रूप से पत्नी को घर परिवार इत्यादि को एकदम से त्याग कर और भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए, जिसको संन्यास आश्रम कहा जाता है। यही सिद्धि है, और ये चारों आश्रम का उद्देश्य एक ही है कि भगवत प्राप्ति। इस कलयुग में संभव नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी के नियमों का हम अगर सही तरीके से पालन करते हैं तो वो दैवी वर्णाश्रम धर्म कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारी आश्रम बनाया, संन्यास बनाया, वानप्रस्थ बनाया और गृहस्थ बनाया। हम लोगों को पालन करना चाहिए प्रभुपाद जी के आदेशों को। फिर बाद में कर्दम मुनि छोड़ के चले जाते हैं, फिर कपिल मुनि माता के साथ रहते हैं। माता की बहुत सारे जिज्ञासा आए थे जो कर्दम मुनि को पूछे थे, मगर कर्दम मुनि ने बताया था कि पुत्र आपको इन सारे जवाब सवालों का जवाब है। फिर माता देवोत्ती ने अपने पुत्र के साथ वार्तालाप की, अपने पुत्र को खुद की गुरु के रूप में स्वीकार किया। देवोत्ती माता ने पुत्र को गुरु बनाया, क्योंकि वो सक्षम थे, क्योंकि कौन थे, स्वयं भगवान थे, इसलिए उनको गुरु बनाए। फिर बाद में माँ बेटे के बीच में वार्तालाप चला, माँ बेटे के बीच में माता पूछते गई एक एक सवाल और बेटा बताते गया। देवहूति माता जी थी लेडीज, शास्त्र में बताया गया लेडीज का दिमाग कम होता है, बुद्धि कम होता है, फिर भी कपिल मुनि ने कौन चीजों को बताया देवहूति को, सांख्य दर्शन, जो कि बड़े बड़े विद्वानों का भी पसीना छूट जाता है समझने में, नहीं समझ में आता है, ऐसे दर्शन को अपने मां को सुनाया था कपिल मुनि ने ना। ये था असलियत में कपिल मुनि का जो फैमिली बैकग्राउंड है कि नहीं। अभी टीचिंग्स, शिक्षाएं कपिल मुनि की, सांख्यम, सांख्य, सांख्य योग का उन्होंने वर्णन किया। ये सांख्य योग क्या है कौन बताएगा? सांख्य योग क्या प्रभु जी? सांख्य योग पदार्थों की विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा भगवत को जानना, वो सांख्य योग है। ये एक सेंटेंस में इसका जवाब, उसको समझने के लिए मैं बताता हूं। ये सांख्य शब्द संख्या से आता है, संख्या मीन्स नंबर्स, गिनती है ना, ये सांख्य शब्द वहां से आता है। पदार्थ मतलब भौतिक पदार्थ, तत्व मतलब मेटेरियल एलिमेंट्स, विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात एक एक भौतिक तत्व को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके उसके बारे में समझ समझ के भगवत तत्व तक जानना, उसको कहा जाता है सांख्य योग। समझा गया? ये केवल अध्ययन के द्वारा संभव होता है, योग मतलब ऐसे कुछ योग करना वैसा नहीं है, ये अध्ययन केवल कैसे समझेंगे, शास्त्रों के द्वारा। एकदम से इन सांख्य दर्शन को जानने वाले लोग शास्त्रों में बहुत उलझे हुए रहते हैं, कभी कभी इनको ज्ञानी कहते हैं। सुना ये शब्द, ज्ञानी, भक्त, कर्मी, योगी, सुना? उसमें से जो ज्ञानी है ना, वो सांख्य दर्शन को जानने वाले या जानने की इच्छुक लोग जो एकदम से लगे हुए रहते हैं शास्त्रों में, भक्ति भक्ति ने वो खाली पढ़ते रहेंगे ये तत्व 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 इन चीजों से बनता है, चीजों से बनता है। तो सांख्य मतलब भौतिक पदार्थों का विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा भगवत ज्ञान को प्राप्त करना, कोई सांख्य हो सीधा उसका सब। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में भी बताया है सांख्य योग का एक सेंटेंस में, जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करें, भौतिक तत्वों को अच्छी तरह से व्याख्या करना, ये सांख्य योग कहा जाता है। तो क्या है ये भौतिक तत्व और क्या है ये, किस प्रकार से विश्लेषण होता है, थोड़ा सा सुनेंगे। मुख्यतः इस ज्ञान के बारे में, ये सांख्य योग के बारे में दो जगहों पे आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। एक है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल सन ऑफ देवहूति, ये ग्रंथ ये भागवत को उसमें से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। और एक है श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद के दूसरा भाग, थर्ड कैंटो सेकंड पार्ट, इसमें कपिल मुनि का अच्छे से वर्णन है, ये सांख्य दर्शन के बारे में वर्णन है। तो ये क्या है तत्व जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं? प्रभुपाद जी ने इसमें लिखते हैं, और मैं भी इस बात को एक दो बार बोल चुका हूं, ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति 24 तत्वों से बनता है। कितने? 24 एलिमेंट्स, 24 तत्वों से पूरा प्रकृति या भौतिक प्रकृति बनता है। ये 24 तत्व क्या क्या है देखिए, 5 स्थूल तत्व, 5 क्या है स्थूल तत्व, क्या क्या है 5 स्थूल तत्व बताइए, पंच महाभूत जिसको कहते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, 5 सूक्ष्म तत्व, ये जो 5 स्थूल तत्व है ना उसी का ही 5 सूक्ष्म तत्व होता है, जैसे गंध स्वाद रंग स्पर्श और शब्द। पृथ्वी का गंध, जल का स्वाद, अग्नि का रंग, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द, इसको सूक्ष्म तत्व कहते हैं। कितने हुए? पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व क्या क्या है? गंध स्वाद स्पर्श शब्द रूप या रंग, है कि नहीं? कितने हुए? 5। कितने हो गए? 10। 4 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार कंटामिनेटेड स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं चित्त, चित्त सुने, चित्त कंटामिनेटेड स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं चित्त, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। ये मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये केवल उसके कार्यों के द्वारा ही उसको अलग अलग समझ सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते आंख मतलब यह है तो मन मतलब कौन सा, ऐसा नहीं बोल सकते। एक ही जैसा, एक ही जगह पर रहने जैसा ही लगेगा, मगर उसका कार्य अलग अलग होता है। बुद्धि का कार्य अलग, मन का कार्य अलग, अहंकार का कार्य अलग और चित्त का कार्य अलग। कभी कभी चित्त सबका मिला जुला के करता है, वो तीनों का कंटामिनेट स्टेट को चित्त कहा जाता है कभी कभी, समझ रहे? मन का कंटामिनेटेड स्टेट क्या बोलेंगे, आगे मैं फिर से बताता हूं, वो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञान इंद्रियां, जिन इंद्रियों के द्वारा, जिन सेंसेस के द्वारा हमको नॉलेज मिलता है, जैसे आंख कान है ना, ये सब है ना, ये 5 होते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, जिन इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। 24 तत्व, इन सबको मिलाने से कितने होते हैं? 24। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 सूक्ष्म तत्व, 5 स्थूल तत्व, ये हो गए 5, 5, 10, 5, 5, 5, 20, और 4 अंतःकरण, कितने हो गए? 24। और इन सबको फिर से अच्छे से समझना, जैसे कि मन बुद्धि अहंकार कलुषित चेतना, हाँ कलुषित चेतना, चित्त मतलब कलुषित चेतना, कंटामिनेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट माइंड, कंटामिनेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारा जो चेतना जब कलुषित हो जाता है उसको चित्त कहा जाता है। तो ये कलुषित चेतना, इन चारों को लेके चित्त, जो 4 अंतःकरण होता है, और ये सब के बारे में फिर से अलग से एक एक को अच्छे से समझना। 5 स्थूल वस्तु क्या क्या है, गंध कैसा है, और उन चीजों से गंध कैसे आता है, इन सारे चीजों का अच्छी तरह से पढ़ना। साथ साथ में 24 को छोड़ के 25वां है काल, टाइम। टाइम क्या करता है? इन 24 तत्वों को इकट्ठा करके प्रकृति का सृष्टि करता है, इसलिए उसको 25वां तत्व कहते हैं। इस बीच में 3 गुण भी होते हैं, मालूम है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और ये 3 गुणों का अनमेन अप्रकट अवस्था, अप्रकट अवस्था समझते हैं,
गुण है मगर अभी प्रकट नहीं हुए हैं, उसको प्रधान कहा जाता है। और ये जो 24 तत्व है, ये जब इकट्ठा रहते हैं काल से पहले, उसको महत्त्व कहा जाता है। ये सब ये समझना चाहिए शब्दों को। महत्त्व मीन्स 24 तत्व है, अभी काल नहीं है उसके पास, 25वां तत्व नहीं है, वो सब इकट्ठा है, उसको कहते हैं महत्त्व। महत्त्व के ऊपर भगवान महाविष्णु जब देखते हैं तभी काल चालू हो जाता है, 25वां तत्व आता है, तब ये 24 तत्व खिलते हैं, काम करने लगते हैं अपना अपना। फिर ये जो तीन प्रधान है ना, प्रधान सत्व रजोगुण इकट्ठा था, फिर वो भी चालू हो जाता है अपना काम करना। प्रधान जब खुल जाता है तभी उसको प्रकृति कहते हैं, समझ रहे हैं? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सभी प्रकट हो जाते हैं, अरे ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, तमोगुण, जब प्रकट हो जाते हैं, पता लग जाता है, तभी उसको प्रकृति कहा जाता है। मगर जब पता नहीं लगता है, जब इकट्ठा रहता है, उसको प्रधान कहते हैं। इस प्रकार ये सब चीजों को अच्छी तरह से समझना, उसको सांख्य योग कहते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा ओवरली बताया, एकदम डिटेल्स लिखा गया, और उसमें भी लंबा लंबा तात्पर्यों के द्वारा, रूपाई का तात्पर्य के द्वारा, उनको अच्छे से समझना, वो सांख्य योग है। इसको अच्छे से उन्होंने समझाया। फिर कैसे 25वां तत्व हो गया काल, फिर आत्मा 26वां, फिर परमात्मा, कोई कोई 25 गिनता है, कोई 26 गिनता है, कोई 27 गिनता है, अलग अलग ज्ञानी अलग अलग रूप में अपना अपना गिनती लगाता है, समझ रहे? कोई एक फॉर्मूला रहता है और उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है मैथमेटिक्स में, है ना? ठीक वैसे ही ये तत्व एक ही है, मगर कोई कोई अलग अलग रूपों में इसका, कोई कोई चित्त को निकाल देते हैं, कोई कोई आत्मा परमात्मा को लाते नहीं है बीच में, इस प्रकार से। मगर एक और बदमाश हुआ था, उनका भी नाम था कपिल। ये इसको नास्तिक कपिल के रूप में लोग जानते हैं। ये नास्तिक कपिल ने भी सांख्य योग का वर्णन किया, समझ रहे? ये जो किताब है ना, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल, उसके नीचे द सन ऑफ देवहूति, ये लिखने का उद्देश्य मालूम है? क्योंकि एक कपिल और हुआ है जिसने, जिसका उन्होंने भी शिक्षाएं दिया, वो भी सांख्य योग है, श्री जगन्नाथ बोल रहे हैं। तो कोई लोग ये कंफ्यूज ना हो जाए, ये जो ग्रंथ है उस कपिल का है करके, इसीलिए उन्होंने ये लिखा कि सन ऑफ देवहूति, देवहूति का लड़का कपिल की शिक्षा है, वो बदमाश की शिक्षा नहीं है, ऐसा। तो क्या अंतर है? उसने भी सांख्य योग बताया, उसने भी भौतिक प्रकृतियों का वर्णन किया, मगर उसमें उसने आत्मा परमात्मा निकाल दिया, भगवान नहीं। तो उस दर्शन का कोई महत्व और चीजें हैं, किस प्रकार से मैनिफेस्टेड ब्राह्मण, अनमैनिफेस्टेड ब्राह्मण, अर्थात प्रकट ब्रह्म, अप्रकट ब्रह्म, इन सारे चीजों के बारे में और गहराई से वर्णन है इसमें। मैं खाली आपको उदाहरण दिया, किस प्रकार से तत्वों का गिनती के द्वारा सांख्य योग कहा जाता है, वो इस प्रकार से होता है। आप यहां से या यहां से उसको पढ़ सकते हैं घर में जाकर, ठीक है? इन सारे तत्वों को बताने के बाद मां पूछती है, ठीक है बेटा या गुरुजी, आपने इन तत्वों का दर्शन शास्त्र जो है ना मुझे बताया, अभी मुझे ये बताओ भगवत भक्ति के बारे में। फिर वो ये तत्व दर्शन किस प्रकार से भगवत भक्ति है उसको समझाते हैं, फिर इन तत्व दर्शनों के से भी श्रेष्ठ भगवत भक्ति है उसका व्याख्या करते हैं। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिने, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र, क्रोधी और पृथकवादी व्यक्ति के द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी भक्ति मानी जाती है। मंदिर में एक पृथकवादी द्वारा भौतिक भोग, यश, ऐश्वर्य की प्रयोजन से की जाने वाले विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों के त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसे भक्ति सात्विक कहा जाता है।
जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण में और तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभाव समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसे भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की अप्रवाहित और प्रभावित हो जाता है। शुद्ध भक्त सालों के शास्त्रीय सामीप्य सायुज्य एकत्व में किसी भी प्रकार की मोक्ष की स्वीकार नहीं करते और भले ही ये भगवान द्वारा किए क्यों ना दिए गए हो।
धीरे धीरे से भक्ति बदलते हैं। एक है तमोगुणी लोग भक्ति करते हैं प्राप्ति के लिए, फिर रजोगुणी लोग भक्ति करते हैं, फिर सत्वगुणी लोग भक्ति करते हैं। रजोगुणी वो पूजा करेंगे, सब करेंगे, क्रोधित रहेंगे, ईर्ष्यालु रहेंगे। तमोगुणी व्यक्ति का भी वर्णन किया गया, रजोगुणी व्यक्ति का भी वर्णन किया गया। सत्वगुणी व्यक्ति कैसे, वो भक्ति करेंगे, उसका जो फल मिलेगा वो भगवान को अर्पण करेंगे। किसके लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आपके धाम में आऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा, समझ रहे हैं क्या? उसको सत्वगुणी भक्ति कहते हैं। मगर शुद्ध भक्ति नहीं है, तीनों शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति मतलब निष्काम। वो कैसा? हाँ, वो कैसा? मम जन्मनी जन्मनी स्वरे, मुझे यहां पे बार बार जन्म लेने से चलेगा, बैक टू गार्डन नहीं जाऊंगा तो चलेगा मुझे? यहां भले ही बार बार जन्म लेना पड़े वापी में, मगर आपके चरणों का अहेतु की भक्ति मेरा बने रहना चाहिए। ये भक्ति, उसको शुद्ध भक्ति मान। इस प्रकार की जब भगवत भक्ति करते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म ध्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अन्य अभिलाषा शून्य, किसी भी प्रकार के अन्य अभिलाषा में मुक्ति की इच्छा भी नहीं, भगवत प्राप्ति की इच्छा भी नहीं। नहीं, मुझे भगवत धाम मिले नहीं मिले मुझे वो लेना देना नहीं। आशिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्य एवनाप्रह। आप मुझे गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत क्यों ना करें, मगर आप ही मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। आप मुझे आलिंगन करें या मुझे दर्शन ना देकर मुझे दुख क्यों ना दे, तड़पाए क्यों ना तड़पाए, फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। ये भक्ति है? इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार की भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्य, उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं। ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान, भगवान से दूर लेने वाला ज्ञान। ज्ञान कर्म, कर्म की वासना नहीं। ये कार्य करूंगा, ये सेवा करूंगा, ये एक्टिविटी करूंगा, ये कहना मानूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, इतना सेवा करूंगा ना इतना मुझे सम्मान मिलेगा, इसके द्वारा मेरा ये भला हो जाएगा। हाँ, मैंने इतना दिनों से सेवा कर रहा हूं, इतना दिनों से भक्ति कर रहा हूं, तो ये सुविधा मुझे मिलना चाहिए, ये पोस्ट मुझे मिलना चाहिए, ये सारा नहीं चाहिए। ज्ञान कर्म अनावृतम, इससे आवृत नहीं होता है व्यक्ति। अनुकूल्येन अनुशीलन, कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, भगवान के अनुकूल भाव से, कृष्ण के, भक्ति केवल कृष्ण के लिए। अनुशीलनम, पूर्ववर्ती आचार्यों की पदचिन्हों के अनुसार प्रभुपाद जी ने जैसे बोला वैसे करना, अपना मन जैसे हुआ वैसा नहीं। अनुशीलनम का अर्थ होता है वो अनुशीलनम, उसको कहते हैं भक्ति उत्तमा। ये उत्तम भक्ति है, इस प्रकार की भक्ति के बारे में बोलते हैं। वो भक्ति के बारे में अपनी मां को फिर बताते हैं, केवल ज्ञान देके नहीं छोड़ देते हैं कपिल मुनि। ये सारे शिक्षाओं को कपिल मुनि दिए, मैं कुछ उसका संक्षेप में बताता हूं। कपिल मुनि ने एक्चुअली क्या 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 सब शिक्षाएं दी, ये आपको इसमें से ही मिलेगा। प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत जो मैं वर्णन किया, फिर ये सब आ गया। प्रकृति का ज्ञान, भक्ति का गुण, मुक्ति, जीव के द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार, अहंकार से मुक्त कैसे होना, ज्ञान का संपूर्ण भक्ति क्या है, भक्ति की दिव्य धाम जाना, रजोगुणी भक्ति, विशुद्ध भक्ति, भक्ति के नित्यंत कर्म करने का होता है, मंदिर की पूजा भक्त का कर्तव्य, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, जीवों का विभिन्न श्रेणियां, भौतिक शरीर का विकास, गृहस्थ शिशु का वेदना, गर्भस्थ शिशु का वेदना, पेट के अंदर बच्चे का तकलीफ, गर्भस्थ शिशु का प्रार्थना, पेट के अंदर बच्चा कैसे प्रार्थना करता है, परमात्मा का शरण लेना, मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य,
प्रसव वेदना, प्रसव के समय बच्चे को पैदा करते समय कितना वेदना होता है, बालपन की पीड़ा, बद्ध जीवन का पुनः नरक नरक जाना, स्त्रियों को संगति से भय, स्त्रियां माया की प्रतिनिधि है।
उसकी माँ को बोल रहे हैं, किसको बता रहे हो, अपनी माँ को कह रहे हैं
स्त्रियां माया की प्रतिनिधि है। भौतिकवादी, सकाम कर्मों में फंस जाना, मृत्यु से भय, कर्म बंधन, भगवान एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न होता है, भक्त समदर्शी होता है,
इस प्रकार के सारे ज्ञान को कपिल मुनि अपने माँ को बताते हैं हम सब के लिए। तो ये भगवान, ये जो भगवान का भी कपिल मुनि का जो अवतार है किसके लिए, हम सभी पतित जीवात्माओं को अपना भक्ति प्रदान करने के लिए। श्री भगवान आप अभी 2400 अवतार आ रहे हैं ना, हरेक अवतार में आप देखेंगे नारद मुनि ने क्या किया, निष्काम कर्म का वर्णन किया जिसके द्वारा भगवत प्राप्त। नारायण ऋषि ने क्या किया, तपस्या के बारे में बताया जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति, उनके पास वापस जाए। कपिल मुनि ने क्या किया, भगवत भक्ति। हरेक भगवान का जो भी अवतार आया है, भले ही किसको मारने के लिए क्या क्या करने के लिए एक्सटर्नल रीजन है, मगर असलियत में उनकी भक्तों को अपनी भक्ति के बारे में सिखा के अपने पास वापस ले जाना, यह भगवान का उद्देश्य है। सुहृदम सर्वभूतेषु, ऐसे श्रीहृद है परमात्मा के रूप में, हमेशा हमको बोलते हैं, गुरु के रूप में, प्रभुपाद के रूप में आते हैं और अलग अलग अवतार लेके शिक्षा देते हैं, गीता देते हैं, भागवत देते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, सुधरते नहीं है, है कि नहीं, फिर भी हम नहीं सुधरते, फिर भी नहीं मानते, हम इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान अत्यंत दयालु है, भगवान के तुल्य दयालु कोई देवी देवता नहीं है, कोई नहीं इतने दयालु जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, कोई नहीं। किंग बाद तम बाद दयालु, वो पुतना की कथा में प्राप्त होता है, उसे मारने के लिए आने पर भी उसका अपना मां बना लेते, विचार करो, मारने के लिए आई फिर भी मां बना दी उसको, इतने दयालु भगवान है। तो ऐसे दयालु भगवान का हमें भक्ति करना चाहिए, यही भागवत का उद्देश्य है, यही हमें सिखाना चाहते हैं भागवत, कि हमें किसी और का नहीं, भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। यही भगवान के अवतारों का भी उद्देश्य है कि हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि मेरे भक्ति मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुर। कपिल मुनि उसमें कहते हैं मेरा भक्ति करना चाहिए, अपनी माँ को कहते हैं मेरा भक्ति करो, मेरा भक्ति करो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरे एक के ही शरण में आओ। हरे कृष्णा, भगवान कपिल मुनि की, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।